أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خداوند متعال تمام ان لوگوں کو جو کرونا وائرس میں مبتلا ہیں، ماہ شعبان کے ان بافضیلت ایام کے طفیل انشاءاللہ خداوند متعال ان تمام مریضوں کو شفا کامل و عاجل عطا فرمائے، اور اس بیماری کو اس دنیا سے محو فرمائے انشاءاللہ. جو لاسٹ سیشن ہم نے کیا تھا عمل کے بارے میں اور اس کے آثار اور ایفیکٹس کے بارے میں، وہ یہ کیا تھا کہ عمل کے آثار، ہمارے جتنے بھی ایکشنز ہیں، ایک ایک ایکشن، اس کے سب سے پہلے کیا ڈسکس کیا تھا، ماضی میں کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں، پاسٹ میں اس کے کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں، چاہے عمل صالح انجام پائے، اچھا عمل انجام پائے، گڈ ڈیڈز، اور اگر بیڈ ڈیڈز انجام پائیں یا برے اعمال گناہ انجام پائیں تو اس کے کیا آثار ہیں، کیا نتائج ہیں ماضی کے اندر. اس کے بعد پھر جو لاسٹ سیشن میں بات ہوئی تھی وہ کیا تھا، وہ یہ کہ ایک انسان کا عمل کس طرح اس کے مستقبل میں، اس کی فیوچر لائف میں کس طرح اثر انداز ہوتا ہے. اور اس کے لیے ہم نے جو آیتیں، دو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اب دوبارہ ہم چونکہ شاید ممکن ہے اس میں تھوڑی مزید ایکسپلینیشن کی ضرورت ہو، اس کو ایک دوبارہ ہم مختصر سا ایک خلاصہ پیش کر لیتے ہیں، ایک سمری دے لیتے ہیں دوبارہ، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ہم آتے ہیں آج ہی انشاءاللہ. آیت کیا تھی، اگر آپ کو یاد ہو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 اور 265. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اب اس آیت میں جو میں آپ کو مفہوم بتا دیتا ہوں، جو ایک خلاصہ اس جو معنی ہے اس آیت کا، میننگ ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان نے ایک عمل انجام دیا، اب اس آیت میں اس عمل کی کیا مثال دی ہے، انفاق کرنا، آپ راہ خدا میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، سپینڈ کرتے ہیں اس کو، فی سبیل اللہ، دیکھیں ينفقون اموالہم، وہ اپنا مال انفاق کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، خدا کے راستے میں. جو شخص فی سبیل اللہ، یہ کنڈیشن بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو آیت ہم بعد میں لکھ رہے ہیں گے اس میں فی سبیل اللہ نہیں ہے، اس میں ایک اور کنڈیشن ہے، وہ ایک ہائی لیول کی کنڈیشن ہے. اس لیول کی کنڈیشن میں کیا ہے، فی سبیل اللہ، اگر کوئی شخص پیسے خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال ایک دانے کی طرح ہے، کہ خدا اگر ایک شخص ایک دانہ، ٹھیک ہے، بوتا ہے اس کو، ٹھیک ہے، کاشتا ہے، تو اس کے نتیجے میں خدا کیا نتیجہ دے گا، 7 فصلیں. ایک دانہ آپ ڈالتے ہیں اور اس کے نتیجے میں 7 فصلیں اگتی ہیں، کراپس، 7 فصلیں اگتی ہیں. اب ہر 7 فصلوں کے اندر 100 دانے موجود ہیں، بس ایک دانہ، 1 سیڈ، اس کے نتیجے میں 7 فصلیں، اور ہر فصل کے اندر 100 دانے ہیں. نتیجہ کیا ہوا، میتھس، ریاضی، نتیجے میں 700 دانے، چونکہ ہر فصل میں 100 دانے ہیں اور فصلیں کتنی ہیں، 7، تو ٹوٹل کتنے دانے نکلیں گے نتیجے کے طور پر، آؤٹ پٹ کے طور پر، 700 دانے. یہ خدا مثال دے رہا ہے اس شخص کی، کہ جو ایک ایسا عمل انجام دے رہا ہے جو فی سبیل اللہ ہے. اب اگلی آیت میں دیکھیں، اسی 2 یا 3 آیت بعد 265 میں آپ دیکھیں اس کو، मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके पास कुरान हो। देखिए बास चीजें, ये एक ब्रैकेट में ओपन करता हूं दोबारा। देखिए मैंने एक वीडियो में ये कहा था कि हमें दीन को स्टूडेंट के तौर पर समझने की जरूरत है। हम जब दीन की बारगाह में आए, किस तरह हम खुदा की बारगाह में जाते हैं, नमाज के लिए वजू करके जाते हैं, तैयार होकर जाते हैं, इंशाल्लाह तैयार होकर ही जाते हैं, ठीक है, किस तरह हम वजू करके जाते हैं, इसी तरह दीन को समझने के लिए भी कम से कम इंसान जब एक दीनी लेक्चर में जाता है, इमाम बारगाह में जाता है, मिंबर के सामने जाता है, तो उसको बावजू होकर जाना चाहिए। क्यों बावजू होकर जाना चाहिए? बावजू होने का असर यह है कि इंसान के खुदा, ये मैं फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ, ये तालीमात दीन के अंदर मौजूद हैं ये बातें, कि खुदावंद मुताल उस शख्स के लिए मलाइका भेजता है। कौन? जो शख्स बावजू होकर दीन के महजर में जाता है समझने के लिए, उसको समझने के लिए, उसकी जो मुश्किल बातें हैं समझने के लिए बावजू होकर तैयारी करके जाता है, तो मलाइका आते हैं और उसको हेल्प करते हैं, मदद देते हैं ताकि वो समझे इन बातों को। तो मैं भी आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप वजू करके आया करें, पेन पेपर हो, बिलाखिर ये कुरान है। जिस तरह हम अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए किस तरह एहतमाम करके जाते हैं, नाश्ता करके जाते हैं ताकि नींद ना आए क्लास के अंदर, और ये सारी चीजें, तो ये तो फिजिक्स केमिस्ट्री से बालतर है। बिलाखिर फिजिक्स केमिस्ट्री भी दीन का हिस्सा है और ये भी दीन का हिस्सा है। तो हम कोशिश करें कि हम एहतमाम के साथ वेल प्रिपेयर्ड होकर कुरान के महजर में आए इंशाअल्लाह। अब ये दूसरी आयत आप देखें, ब्रैकेट क्लोज, अब ये दूसरी आयत देखें, वह मसलुल्लज़ीना युन्फिकून अमवालहुम इब्तिगा मरज़ातिल्लाह। देखिए उस आयत में भी युन्फिकून अमवालहुम, इस आयत में भी युन्फिकून अमवालहुम, कंडीशन में फर्क आ रहा है। ऊपर कंडीशन क्या थी? फी सबीलिल्लाह। यहां पर कंडीशन क्या है? इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, खुदा की रजा की खातिर, खुदा की रजा की खातिर, व तस्बीतन मिन अनफुसिहिम। खूब, अब ये दूसरी कंडीशन है, फिलहाल इसको नहीं देखते, लेकिन मेन कंडीशन क्या है? इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, खुदा की रजा की खातिर। अब इस कंडीशन के तहत अगर इंसान कोई अमल अंजाम दे, इन्फाक करे, तो क्या होगा उसका आउटपुट? क्या होगा? कमसली जन्नतिन, वहां पर कमसली हब्बतिन था, यहां पर कमसली जन्नतिन। देखिए वर्ड एक ही है, सिर्फ नुक्तों का फर्क है, अजीब नहीं है? सिर्फ नुक्तों का फर्क है, वहां पर हब्बतिन आया है, यहां पर जन्नतिन आया है। यानी अगर एक इंसान एक अमल अंजाम देता है तो खुदा उसको क्या आउटपुट देता है? 700 दाने, एक बीज जिसको बोया जाता है, और फिर 7 फसलें, और फिर हर फसल में 100 दाने, और इज इक्वल्स टू 700 दाने। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर बीज और उसके आउटपुट में दाने नहीं है, बल्कि उसका आउटपुट बाग है। जन्नत का डिक्शनरी माना यानी बाग, गार्डन, यानी यहां पर खुदा गार्डन दे रहा है। सही है, फर्क नहीं है आउटपुट में, ठीक है। तो अब हम इसको, अब ये इन्फाक की मिसाल दी ना, अब आप इसको मुख्तलिफ, खुदा ने आमाले सालिहा के मुख्तलिफ आउटपुट्स बयान किए हैं, ठीक है। अब आप बताएं, अब आप खुद, मुमकिन है खुदा से, खुदा है मुझे बाग नहीं चाहिए, सही, मुझे 700 दाने नहीं चाहिए, कम अज कम एटलीस्ट द लीस्ट थिंग जो खुदावंद मुताल एक अमल साले के नतीजे में आपको देगा, मुझे देगा, वो क्या होगा? या तो बाग था, कम अज कम क्या होगा? एक अमल के नतीजे में दो अमल साले, ठीक है। अगर आपको बाग नहीं चाहिए तो कम अज कम आपको दो अमल साले नसीब में मिलेंगे, गिफ्ट के तौर पर और तोहफे के तौर पर तो आपको मिलेंगे। अब चूंकि अमल, मैंने आपको कहा था, अमल लहजा बे लहजा है, मोमेंट टू मोमेंट है, लम्हा बे लम्हा है, हर लम्हे इंसान अमल अंजाम दे रहा है, ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल ये सेशन सुन रहे हैं अपने सोफे पे या बेड पे बैठकर, मोबाइल पे हेडफोन लगा के, वॉट एवर, साथ में आप खाना भी खा रहे हैं, आप लेक्चर भी सुन रहे हैं, आप चिप्स भी खा रहे हैं, तो ये चिप्स खाना अमल शुमार नहीं होगा, ये भी अमल शुमार होगा, सही है। आप फॉर एग्जाम्पल लेक्चर सुनते सुनते किसी को मैसेज पे, अपने व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी करें, ये व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना एक अमल है, लेक्चर सुनना भी अमल है, व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना भी अमल है। बस अमल लम्हा, हर मिली सेकेंड, आप जितने भी आप टाइम को जूम इन करते जाएं टाइम को, तो बिलाखिर अमल कहलाएगा हर चीज, हर चीज अमल कहलाएगी। अब इंसान एक लम्हे अमले साले अंजाम देता है। इन आयात को देखते हुए मैं नतीजा ले रहा हूं, मैं अपना नतीजा नहीं ले रहा हूं बल्कि असातीद और उलमा और बिलखुसूस अल्लामा तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह ने जिन्होंने अलमीज़ान लिखी है, इनके बारे में मजीद इंशाल्लाह मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इनके जो मसलन जो आज शागिर्द इस किताब के हवाले से, तफसीर मीज़ान के हवाले से क्या अहमियत है, इनके जो शागिर्द हैं स्टूडेंट्स हैं वो इस किताब को किस तरह आगे ले चल के दुरुस दे रहे हैं, इंशाल्लाह वो अगर मौका मिला मैं दोबारा ब्रैकेट ओपन करके मैं आपको बताऊंगा। अब ये आयत, दो आयत आपके सामने। अब एक लम्हे में इंसान अमले साले अंजाम देता है, नतीजे में खुदा कम अज कम दो अमले साले उसको नतीजे में देता है, यानी इंसान को हर अमले साले अंजाम देने के बाद दो अमले साले की तौफीक नसीब होती है, और अगर इंसान उन दो अमले साले की जो तौफीक है उसको बजा लाता है, उसको इंप्लीमेंट करता है, तो नतीजे में आप इस मल्टीप्लाइंग इफेक्ट को लगा दे जाए, मल्टीप्लीकेशन कर दे जाए, तो आपको मुसलसल इंसान को लम्हा बिलम्हा अमले साले नसीब हो रहे हैं। अगर इंसान का दिन ऐसा गुजरे, अब आप ये ना समझे कि अमले साले जो मुझे नसीब हो रहे हैं यानी मैं अभी नमाज पढ़ रहा हूं उसके बाद मैं कुरान पढ़ूंगा, फिर उसके बाद मैं दुआ पढ़ूंगा, उसके बाद मैं कोई हदीस पढ़ूंगा, उसके बाद मैं कोई मजलिस सुनूंगा, अरे ये है अमले साला? नहीं, नॉट नेसेसरी कि आप हतमन अमले साले को कुरान की तिलावत और इन चीजों पर ले आए, नहीं, मुमकिन है आप खाना खा रहे हैं वो आपका अमले साले शुमार हो। क्यों? आपकी नीयत पर डिपेंड करता है। अगर आपको याद हो हमने कहा था इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस है कि नीयत ही इंसान का अमल है। अमल इज नॉट दिस फिजिकल मूवमेंट ऑफ माई बॉडी, अमल जिस्मानी हरकत का नाम नहीं है। अमल क्या है? अमल वो नीयत है जो मैं अंजाम देता हूं, उसका रिजल्ट मेरी ये बॉडीली मूवमेंट है जो कि हम जिसको अमल कहते हैं। दर हकीकत अमल वो नीयत है। अगर आप डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, किस नीयत से खा रहे हैं आप खाना? आप खाना किस नीयत से खा रहे हैं? आया शहवते पेट के लिए हम खाना खा रहे हैं? नहीं। अगर मेरी नीयत ये खुदाया, अब नीयत लाजमी नहीं कि लफ्जी हो, इंसान के दिल में होती है, इंसान के जहन में होती है, इंटेंशंस में होती है नीयत, यानी इंटेंशन, यानी आपका ये इंटेंशन है, मेरा ये इंटेंशन है कि मैं खाना खा रहा हूं ताकि मैं जिस्मानी कुव्वत पैदा कर सकूं, ताकि दीन की खिदमत कर सकूं, तो ये क्या कहलाएगा? अमले सालेह। अब ये अमले साले आपको किस नतीजे में मिला? चूंकि आपने नमाज अव्वल वक्त पढ़ी है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने बहुत ताकीद की है कि और सरजनिश की है और डिफेम किया है उस इंसान को जो नमाज को हल्का लेता है, जो अव्वल वक्त नहीं पढ़ता। अब अगर मैं अव्वल वक्त नमाज पढ़ रहा हूं यानी मैं नमाज को अहमियत दे रहा हूं, इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, चूंकि इंपॉर्टेंस दे रहा हूं और नमाज को बेहतरीन अंदाज में एहतमाम के साथ कंसंट्रेशन के साथ मैं पढ़ रहा हूं, तो नतीजे में क्या होगा? इस अमले साले के नतीजे में खुदा आपकी हिदायत करेगा, रहनुमाई करेगा कि यानी आपके जमीर के अंदर, आपके दिल में एक ऑटोमेटिकली एक गाइडेंस की आवाज आएगी। सही है, आप ऑटोमेटिकली कुछ आमाल अंजाम देंगे, यानी इस तरह से कि जब आप खाना खाने बैठ रहे हैं तो आपको एक बिलाखिर अंदर से एक नीयत पैदा होगी, खुदा मैं ये खाना खा रहा हूं ताकि तेरी दीन की खिदमत कर सकूं। अब अगर एक खातून है जो किचन में खाना पका रही है, ठीक है, अगर वो वजू करके खाना पकाए, ठीक है, और इस नीयत से इस खाने को पकाए किचन के अंदर के खुदाया मैं खाना पका रही हूं और इसको मैं नजर कर रही हूं सुफरे हजरत जहरा सलामुल्लाह के की नजर कर रही हूं, तो ये अमल, ये खाना पकाने का अमल मुत्तसिल हो जाएगा विलायत से, तो क्या ये अमले साले नहीं कहलाएगा? ये अमले साले कहलाएगा। तो अमले साले के मुख्तलिफ टाइप्स और काइंड्स हैं। अब आप देखें किस तरह खुदावंद मुतआल ने इस निजाम को, सिस्टम ऑफ आमाल को दकीक बनाया है। क्या हम अगर जिस तरह खुदा ने दिक्कत की है और दकीक ये बनाया है ये सेट ऑफ लॉज को, तो क्या हम अपनी जिंदगी में दकीक नहीं हो सकते? अगर हम अपनी जिंदगी के एक-एक अमल को सीसीटीवी कैमरा की तरह हम देखने लगें, ओके, और नाजिर हो जाएं और देखने लगें, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम हर चीज के बारे में हम केयर करने लगें, केयरलेस ना हो हम अपने आमाल के बारे में, हम अगर चाहें तो अपने आमाल को एक एक अमल को अमल सालेह में तब्दील कर सकते हैं, ओके। और मैंने मसलन आपको मिसाल दी, खाना पकाने की मिसाल, कि इंसान उसी चीज को जो है विलायत के साथ मुत्तसिल कर सकता है, मासूमीन अलैहिस्सलाम के साथ मुत्तसिल कर सकता है। तो ये एक खुलासा था आमाल के इफेक्ट्स का माजी में और फ्यूचर में। अच्छा, अगर इंसान खुदा ना खासा गुनाह अंजाम दे तो क्या होगा? अगर अच्छा अमल अंजाम दे, गुड डीड्स अंजाम दे, तो नतीजे में मजीद इंसान को गुड डीड्स की तौफीक मिलेगी। अगर बैड डीड्स अंजाम दे तो क्या होगा? गुड डीड्स की तौफीक खत्म हो जाएगी, अच्छे आमाल की तौफीक इंसान को अब नहीं मिलेगी। हाँ, इंसान अगर गुनाह अंजाम दे तो एक रिवायत के अंदर है तो कि 7 घंटों तक, 7 आवर्स, 7 घंटों तक इंसान के आप उस अमल को, उस गुनाह को नहीं लिखा जाता, उस गुनाह को नहीं लिखा जाता 7 घंटों तक। यानी अगर 7 आवर्स तक इंसान ने तौबा कर ली, इट्स ओके। अगर तौबा नहीं की 7 आवर्स तक, तो अनफॉर्चुनेटली 7 आवर्स बाद पर उसको लिखा जाएगा। मगर ये कि इंसान की तौबा शदीद हो, डीप हो उसकी तौबा, तो मुमकिन है वो जो पहले लिखा गया था उसको मुमकिन है पाक किया जाए, उसको डिलीट किया जाए। खुदा हमें तौफीक दे कि हम आमाले सालिहा को अंजाम दें। अब यहां पर एक और पॉइंट है कि अब ये देखें, ये सारी बातें तरबियती निजाम में, हम देखें तरबियत औलाद और इस अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रेन, इन चीजों के लिए हम मुख्तलिफ वर्कशॉप्स और कैंप्स और लेक्चर्स को अरेंज करते हैं कि फलां आगा साहब आ रहे हैं और टॉपिक क्या है, तरबियत औलाद। अब आप बताएं, अगर इंसान इसी चीज को, निजाम आमाल को, सिस्टम ऑफ आमाल को अगर हम समझ लें, तो क्या ये हमारी और हमारे बच्चों की तरबियत में इफेक्टिव नहीं है, मुअस्सिर साबित नहीं हो सकती है? अब अगर मुझे अंदाजा हो जाए कि अमल साले का ये असर है, तो क्या मेरे अंदर शौक नहीं बढ़ेगा अमले साले को अंजाम देने का? और अगर अमले ना सालेहा का, सैयाह का, गुनाह का ये असर है, तो क्या मेरे अंदर नफरत ईजाद नहीं होगी? नहीं होगी नफरत ईजाद उस गुनाह से। अब आप देखें, ये एक और पॉइंट मैं आपके सामने बता रहा हूं कि मुस्तकबिल के जितने भी आमाल हैं, मुस्तकबिल के जितने भी आमाल हैं, अभी आप बैठे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी यहां पर टाइम हो रहा है 6:32, 6:32 यहाँ का टाइम है। अब मैं एक अमल अंजाम दे रहा हूं, ठीक है, इस मैं स्पीच अंजाम दे रहा हूं, आपके सामने रिकॉर्डिंग हो रही है और आप उसको सुन रहे हैं। 7 o'clock, आफ्टर हाफ एन आवर, जो अमल मैं अंजाम दूंगा वो इस अमल का नतीजा होगा। बल्कि और इसको हम डीप करें, जूम इन करें, मैंने 7 o'clock की बात की, अब ये स्पीच खत्म होती है 6:35 पर, आफ्टर 3 मिनट्स। मसलन अगर 6:37 पर मैं कोई अमल अंजाम दे रहा हूं, तो ये पिछले अमल का नतीजा होगा। आप देखें, बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त गुनाह में मुबतला है, ओके, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग क्राइम्स का शिकार हैं, अमल नासालिहा का शिकार है, मुजरिम है, जुर्म अंजाम दे रहे हैं, ये हतमन यकीनन उनके पिछले गलत और बुरे आमाल का नतीजा है, ठीक है। अगर इंसान आज, अगर वो 30 साल का है, बहुत अच्छा अमल अंजाम दे रहा है, यकीनन पिछले आमाल उसके कोई अच्छे गुजरे हैं जिसके नतीजे में खुदा ने इसको ये तौफीक दी है। तो ये एक सिस्टमैटिक अंदाज है खुदा का, एक सिस्टम बनाया खुदा ने, और हम अगर इस सिस्टम को नहीं समझेंगे, मुमकिन है खुदा ना खासा हमारी आकिबत अच्छी ना हो। खुदा हम सब की आकिबत बखैर फरमाए इंशाअल्लाह। अब आप दोबारा उस व्हाइट बोर्ड एनिमेशन को देखें, हमने उस व्हाइट बोर्ड एनिमेशन का सिर्फ एक टेबल हमने कंप्लीट किया है, एक चार्ट हमने कंप्लीट किया, एक पार्ट। दूसरा पार्ट रहता है कि मेरा अमल इसका ताल्लुक इंसानों से है। पहले क्या था, मेरा अमल मेरे अपने माजी के आमाल और मेरे अपने फ्यूचर के आमाल से ताल्लुक रखता है। अब मेरा यही अमल मेरे इर्दा गिर्द तमाम इंसानों के साथ मुर्तबित हो जाता है। मेरा यही अमल माजी के अंदर तमाम जितने भी इंसान अंबिया अलैहिस्सलाम यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जो कौमें गुजरी हैं, जितने भी इंसान आए हैं अब तक और फौत हो चुके हैं, उन तमाम इंसानों के ऊपर मेरा ये अमल असरअंदाज हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है उसका। और आइंदा फ्यूचर में मुस्तकबिल में जितने भी इंसान आएंगे उन तमाम इंसानों के ऊपर मेरा ये अमल, आज का अमल असरअंदाज होगा। अजीब नहीं है? क्योंकि जाहिर सी बात है, शायद पहली दफा सुना है और ये बातें नहीं की जाती हैं। और जिस तरह हम जब इंसान जब बच्चा बड़ा होता है तो माँ बाप फौरन उसको राउंड टेबल में भेजते हैं और रमजान क्लासेस और समर कैंप, संडे क्लासेस, और वहां पर अहकाम पढ़ाए जाते हैं और खुदा को इस बात किया जाता है, खुदा को साबित करने के हवाले से जो दुरुस और अकायद के जो दर्स दिए जाते हैं, और बहुत ज़रूरी है, ये सब ज़रूरी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, लेकिन अगर दीन की वो अलिफ बे है तो अलिफ बे ये भी है। क्यों? क्योंकि इंसान जैसे बालिग होता है फौरन फरिश्ते आते हैं और उसका एक एक अमल नोट करना शुरू कर जाते हैं, करते हैं। तो क्या ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि हम जाने के अमल क्या है, उसका सिस्टम क्या है? ओके, अब हमें ये देखने कि क्यों क्यों मेरा अमल, क्यों आपका अमल, क्यों इंसान का अमल दूसरे इंसानों से मरबूत है, इसकी ये बहुत ही दकीक बहस है। इसका डायरेक्टली एक रिलेशन कयामत से है, इसी बहस का रिलेशन कयामत से है। वो किस तरह? खुदा ने कुरान में फरमाया है, कयामत के या कियामत के बहुत सारे नाम हैं, उसमें से एक नाम है यौमुल जमा। कुरान के अंदर ये आयत आई है, ज़ालिका यौमुन मजमूउन लहुन नास, ज़ालिका यौमुन मजमूउन लहुन नास, कि लोगों को वहां पर कयामत के दिन जमा किया जाएगा, ठीक है, मजमूउन सबको जमा किया जाएगा। और यही ताबीर जो है एक और आयत में भी की गई है, इस्तेमाल की गई है। क्यों लोगों को जमा किया जाएगा कयामत के अंदर? ये लोगों को जो जमा करना है कयामत के अंदर, इसका क्या मतलब है? या नीचे लोगों को जमा करना, जिस तरह यहां पर फॉर एग्जाम्पल एक कोई सेशन किया जाता है, कोई प्रोग्राम किया जाता है 50,000 लोगों का, 50,000 लोगों का, और सब जमा होते हैं एक टेंट के नीचे, आया ये इस तरह जमा होना मुराद है या क्या मुराद है? अब मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही अमीक और डीप बहस है, फिलोसॉफिकल बहस है ये, और इसको अगर हम अनजान असातीद ने इसके ऊपर शायद 200 या 300 लेक्चर्स दिए हैं, ये एक यानी महज हौजवी बहस है, ये मदरसे बहस है ये, और इसको बिलाखिर हम सबको समझना जरूरी, मोमिनीन के तमाम तबकात को इन मबाहिस को, इन टॉपिक्स को समझना जरूरी है। नॉर्मली हमारी सोसाइटीज में, हमारे कल्चर के अंदर तौहीद को, मैं एक आपको बहुत की पॉइंट बता रहा हूं, हम तौहीद को ज्यादा एम्फेसिस करते हैं, जबकि कुरान के अंदर माद और कियामत की ज्यादा आयतें आई हैं। अजीब सी बात नहीं है? लिहाजा यानी खुदा ने भी कयामत को ज्यादा फोकस किया है, तौहीद को कम फोकस किया है। अब हम जो मुसलमान हैं खुदा को मानते हैं, आप मानते हैं ना खुदा को, आपके लिए खुदा का वजूद साबित है। अब मैं आपके सामने अगर दोबारा ये क्लासेस शुरू कर दूं कि खुदा है, खुदा है, खुदा को साबित करने के लिए मैं आपके सामने 10 दलीलें लेकर आता हूं, तो आपको आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा? आपको मुझे बताएं, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं आपको 10 दलीलों से साबित कर दूं कि खुदा मौजूद है? क्लास में आने से पहले आपको मालूम था खुदा मौजूद है, मैंने आपको 10 दलीलें समझा दी कि खुदा मौजूद है, क्या फर्क पड़ा आपको? मैं नहीं कह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है लेकिन एक खास हद तक। हम क्या करते हैं एवरी ईयर, हम हर साल अपनी क्लासेस के अंदर क्या करते हैं, आप देखें माहे रमजान में क्लासेस में क्या होता है, हर साल वही सिलेबस, हर साल वही टॉपिक्स, हर साल खुदा को साबित कर रहे हैं। भाई खुदा साबित है, अब आगे की बात करो, अब मैं क्या करूं अपनी लाइफ में, मेरा रिलेशन क्या होना चाहिए इस खुदा के साथ जिसको मैं 10 सालों से साबित कर रहा हूं, अब क्या, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट नेक्स्ट। अब आप देखें ब्रैकेट, माजरत मैं ब्रैकेट ज्यादा ओपन एंड क्लोज कर रहा हूं लेकिन ये बातें इंपॉर्टेंट है, बिलाखिर ब्रैकेट वाली बातें इंपॉर्टेंट है। क्या बात हो रही थी कि इंसान को क्यों, लोगों को क्यों जमा किया जाता है कयामत के अंदर। फिलहाल इसको नहीं देखते हैं, हम फिलहाल इस बात पे यकीन कर ले क्योंकि कुरान में आए और कयामत के नामों में से एक नाम है यौमुल जम, लोगों को जमा किया जाएगा। अब देखिए कयामत के अंदर इंसान का जब नामा आमाल उसके सामने पेश किया जाएगा तो बहुत सारे इंसान ऐसे होंगे, ये बहुत गौर से सुने, कयामत की बात हो रही है, बहुत सारे इंसान ऐसे हैं कि जिनके नामाए आमाल के अंदर बहुत सारे कत्ल लिखे जाएंगे कि इस शख्स ने 10 कत्ल अंजाम दिए, वो शख्स का या खुदा खुदाया मैंने मैंने तो कत्ल अंजाम नहीं दिए हैं, ये मेरे नामाए आमाल में कैसे आ गए, नामाए आमाल में कत्ल लिखे हुए इंसान के, क्यों, क्योंकि दुनिया के अंदर इसी इंसान ने किसी एक सिचुएशन के अंदर, किसी एक खास शरायत के अंदर, फॉर एग्जाम्पल कोई बातचीत हो रही है किसी ग्रुप ऑफ पीपल से, कोई बातचीत हो रही है ठीक है किसी मसले के बारे में, किसी इशू के बारे में, उस गैदरिंग में ये शख्स बैठा हुआ है, ये शख्स अब कोई डिसीजन मेकिंग हो रही है उस ग्रुप के अंदर, उस डिसीजन मेकिंग के अंदर ये शख्स खामोश बैठा हुआ है, इसकी खामोशी की वजह से एक कत्ल अंजाम पाता है। यानी आप इसको यूं ले सकते हैं कि इसकी खामोशी यानी इसकी रजा, इसका राजी होना, अगर ये बोल पड़ता एतराज करता तो वो कत्ल अंजाम नहीं पाता, लेकिन चूंकि ये खामोश रहा ठीक है उस डिसीजन मेकिंग के मुकाबले में, तो नतीजे में वो कत्ल अंजाम पाया और उस कत्ल का अमल इसके परवंदे में, इसकी फाइल केस में लिखा जाएगा, इसके नामा आमाल में लिखा जाएगा। तो आप देखिए ये ऐसी सिचुएशंस तो डेली बेसिस पे रोजाना पेश नहीं आती हमारे साथ, मसलन 5-6 खवातीन बैठी हुई हैं एक ऐसी खातून के बारे में जो उस सेशन में मौजूद नहीं है ठीक है उस गैदरिंग में, उसके बारे में गीबत हो रही है, उसके बारे में गीबत हो रही है, अब 3 खवातीन गीबत अंजाम दे रही हैं और 3 खामोश बैठी हुई सुन के हंस रही हैं और मजे ले रही हैं उस गीबत के बारे में, सही है, तो क्या होगा, इनका सुनना और कुछ ना बोलना, एतराज ना करना इनके नामा आमाल में लिखा जाएगा कि इन्होंने भी गीबत की है। अब मुमकिन है कि दिल में किसी को एतराज हो कि यार ये गीबत अंजाम नहीं पानी चाहिए, क्यों गीबत कर रही है उसके खिलाफ, ये इसके दिल में ये यानी शीज एतराज कर रही है वो, लेकिन उस एतराज को जबान पर नहीं ला रही है, रोक नहीं रही उसको उस अमल को, नतीजे में उसके नामा आमाल में लिखा जाएगा। तो हमें फिर बस ख्याल करना चाहिए कि यानी अतराफ में हो क्या रहा है, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, क्या बातें की जा रही हैं, और हम अपनी जबान पे कंट्रोल करें, बिलाखिर हम अपने आमाल पे कंट्रोल करें, यहाँ पर ऐसा ना हो कि हम कयामत में जाएं और हमारे नामा आमाल में गीबत लिखा हुआ हो, कत्ल लिखा हुआ हो और पता नहीं क्या क्या बुरे आमाल हमारे फाइल केस में लिखा हुआ हो। तो अब देखें ये असर कहाँ था, ये देखें ये असर था मेरा एक अमल का मेरे इर्दा गिर्द अफराद की निस्बत, ओके यानी मेरे खामोशी के नतीजे में कत्ल अंजाम पाया और मेरे नामा आमाल में आ चुका, ये एक। दो, मेरा एक अमल, इंसान का एक अमल उसके माजी के जितने भी अफराद गुजर चुके हैं उनके ऊपर ये अमल असरअंदाज पा रहा है, यानी क्या, यानी चे मसलन एक हदीस है, हदीस है कि मन सुन्नतन मन सन्न सुन्नतन हसनतन फलहू अजरु मन अमिला बिहा, जो शख्स आज कोई कोई सुन्नत गुजारी करें। आपने फॉर एग्जाम्पल एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन खोली है, आज चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, और नतीजे में आपके ऑर्गेनाइजेशन के नतीजे में क्या होता है, बहुत सारे भूखे अफराद, उनको खाना मिल रहा है, उनके पेट भरे जा रहे हैं, ठीक है, उनको फकर से और पॉवर्टी से निकाला जा रहा है। अब एक इंसान फौत हो जाता है, जिसने ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन खोली है वो फौत हो जाता है, और ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन 100 साल तक चलती है। यानी जिसने ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की है, फॉर्म की है, उसके नामा आमाल में, सही है, उसके नामा आमाल में, ठीक है, उन तमाम आमाल को लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जितनी भी पॉवर्टी खत्म हुई है 100 साल के बाद, 100 साल तक इसके नामा आमाल में लिखा जाएगा। अब आप कहेंगे ये तो फ्यूचर के से रिलेटेड हो गया, यही अमल फ्यूचर से भी रिलेटेड हो जाएगा, पास्ट से भी रिलेटेड हो जाएगा, माजी और मुस्तकबिल दोनों। मिसाल यानी मैं दोबारा इसी मिसाल को दोबारा रिफाइन करता हूं, आप देखें आप फौत हो चुके हैं, खुदा ना खास्ता चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए, 10 साल बाद फौत हो चुके हैं। अब आगे आने वाले जितने भी इंसान आएंगे जिनके पेट भरे जा रहे हैं, सही है, इसका सवाब आपको मिलेगा। किसको? आपको, जो गुजर चुके हैं आप, यानी आप फौत हो चुके हैं, अगले आने वाले इंसानों के आमाल, सही है, उनको लिखा जाएगा पिछले इंसानों के आमाल में, क्योंकि उन्होंने सुन्नत गुजारी की थी। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ, प्रॉब्लम ये है कि हम टाइम को, टाइम ये मुमकिन है समझना मुश्किल हो, इसके ग्रास्प करना, एब्जॉर्ब करना प्रॉब्लम मुश्किल हो, क्यों? क्योंकि हम टाइम को जुज जुज समझते हैं। मसलन अभी 6:46 हो रही है, ठीक है, जो 6:30 गुजरी हम उसको जुदा समझते हैं, हम समझते हैं वो गुजर चुकी है, 6:30 इज गॉन, जबकि 6:30 इज नॉट गॉन। कल 5 बजे थे, हम समझते हैं कल, वो तो कल 5 बजे थे ना, आज का 5 बजना और है, कल का 5 बजना और था, वो गुजर चुका, रात गई बात गई, कहते हैं ना हम रात गई बात गई, ऐसा नहीं है, रात गई बात गई नहीं है, दिस इज अ मिथ, खुदा के निजाम में दिस इज अ मिथ, रात गई बात गई नहीं है, बल्कि जमाना टाइम एक वाहिद है, एक वजूद है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जो भी टाइम गुजरा है वो एक वजूद है। ये फिलोसॉफिकल बात है, फलसफी बात है, वो एक वजूद है, सही है, हम इसको जुदा से जुदा 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 समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है, ओनली वन वजूद, दैट्स इट। यानी ये जो आज फॉर एग्जाम्पल 6 बजे हैं, कल का 6 बजना, आज का 6 बजना, दो हिस्से हैं टाइम के, ऐसा नहीं कि कल जो 6 बजे थे वो गुजर चुके, खत्म हो चुके, डिलीट हो चुके हैं, डिलीट नहीं हुए, खुदा के निजाम में ये सब शामिल है और एक वजूद समझा जाता है, एक टाइम समझा जाता है, हम इसको मुख्तलिफ टाइम शुमार करते हैं क्योंकि हमें बिलाखिर मुख्तलिफ काम अंजाम देने होते हैं, टाइम मैनेजमेंट करनी होती है, स्लीप मैनेजमेंट करनी होती है, 6 बजे ये काम करना है, 4 बजे वहां जाना है, 7 बजे उसके घर जाना है, तो हमने टाइम को अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने टाइम को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया गया, डिवाइड डिवाइड किया है, जबकि खुदा के निजाम में टाइम की कोई डिविजन नहीं है, टाइम इज ओनली वन। ओके, बस वो अफराद जो मेरी जिंदगी से पहले गुजर चुके हैं उनके आमाल में और उनके वजूद पे मेरा ये अमल असरअंदाज हो रहा है। अच्छा, अगर खुदा ना खासा किसी ने गुनाह अंजाम दिया है, किसी ने ऐसी कोई सुन्नत अंजाम दी है, गुनाह की सुन्नत अंजाम दी है, और उसकी आने वाली जितनी भी नस्लें हैं और जितनी भी उस सोसाइटी के अंदर जितने भी अफराद हैं वो उस गुनाह को अंजाम दे रहे हैं, नतीजे में उन तमाम गुनाहों को उसके अमल में लिखा जाएगा, उसके अमल में लिखा जाएगा। तीन और आखिरी, कि मेरी जिंदगी और आपकी जिंदगी के बाद जितने भी अफराद आएंगे, पैदा होंगे, उनके नामाए आमाल में और उनके वजूद पे मेरा ये अमल असरअंदाज होगा। सही, कैसे? वही मिसाल ले लें आप, मन सन्ना सुन्नतन हसनतन वाली मिसाल ले लें, आपने आज सुन्नत गुजारी की है, ठीक है, आपने आज सुन्नत गुजारी की है, इसका असर आने वाले तमाम इंसानों पर होना है, तमाम इंसान उस अच्छी सुन्नत से इस्तेफादा कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप JDC की मिसाल ले लें, जो आजकल माशाल्लाह बहुत फाले, खुदा उनको कामयाब करे, उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। अब आप देखें खुदा ने क्या तरीका बनाया है कि एक सुन्नत बनाई है किसी ने चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, और नतीजे में आने वाले इंसान आपके इस अमल, आज के अमल से आने वाले इंसान फायदा उठा रहे हैं। यानी आपने जो अमल आज अंजाम दिया है, आने वाले जितने भी इंसान हैं उनके वजूद पर ये असरअंदाज हो रहा है, और नतीजे में यानी बैक टू बैक, यानी रफ तो बदगश है, आना जाना है इस अमल के असर का। वो अमल अंजाम दे रहे हैं आपके ऊपर आपके ऊपर असरअंदाज हो रहा है, आप अमल अंजाम दे रहे उनके नामा अमल पर असरअंदाज हो रहा है। मैंने आपको एक मिसाल दी, यहाँ पर 10 और मिसालें हैं, बहुत सारी मिसालें हैं। अगर इस मौजू में ज्यादा वारिद होंगे तो वी नीड मोर सेशंस ऑन दिस। मैं सिर्फ आपको की पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये हुस्ने जन रख कर के आप इससे मजीद जो है वो नतीजा निकाल सकते हैं इंशाल्लाह, अगर आपके वजूद के अंदर तलब मौजूद हुई। क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तलबुल इल्म फरीदतन फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन, यानी जिसके वजूद के अंदर तलबुल इल्म है, तलब इल्म, देखें इल्म की तलब, अगर आपके वजूद के अंदर इल्म की तलब हुई तो बाद में इंशाल्लाह खुदा आपको तौफीक देगा, अच्छे उलमा आएंगे और इस इन मबाहिस को अंजाम देंगे, और ये मबाहिस और ये टॉपिक्स जो हैं इंशाल्लाह मजीद इसको हम डीप सेशंस में अंजाम दे सकते हैं इंशाअल्लाह। अब यहां पर अब हमें ये देखना है, ये आप देख रहे हैं खुलासतन मैंने आपके सामने इन 3-4 सेशंस के अंदर ये टॉपिक्स और ये इफेक्ट्स आपको बता दिए। अब हमें ये देखना है कि हमारे जितने भी अहमाल हैं वो किस तरह और किन टाइम्स में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किए जाते हैं, और ये बहस क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों नामाए अमल का इमाम के सामने जाना, इमाम की खिदमत में जाना, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, और इसका असर हमारी लाइफ में क्या है। बिलाखिर हमारा वो राबता नहीं है जो होना चाहिए इमाम जमान अलैहिस्सलाम से, वो कल्बी राबता नहीं है। हम इंशाल्लाह कभी इसके बारे में बात करेंगे कि हम बहुत ज्यादा इफरात और तफरीत की तरफ जाते हैं, सही, बहुत ज्यादा इफरात और तफरीत, एक्सट्रीमिज्म एक लिहाज से मौजूद है इमाम से राबते को बरकरार करने के एतबार से। हर ग्रुप के अंदर ये एक्सट्रीमिज्म मौजूद है, ये इफरात और तफरीत मौजूद है, वो एतदाल का रास्ता नहीं है हमारे पास। वो जब जबकि खुदावंद मुताल ने आइमा अलैहिस्सलाम ने अहादीस के अंदर बेहतरीन तरीका बताया कि किस तरह हम आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम से अपना कल्बी राबता, कल्बी राबता सिर्फ ये नहीं है कि मैं इमाम से बात करूं और इमाम मेरी बात का जवाब ना दें। हम ये समझते हैं कि चूंकि हमें इमाम की सदा जो है वो सुनाई नहीं दे रही है, उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, तो इमाम हमें शायद जवाब भी नहीं दे रहे होंगे, सही है, यानी एतकाद है इस बात का, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वो असर नहीं है इस चीज का, ठीक है, कि इमाम हमारी बात का जवाब दे रहे हैं और इमाम 24 घंटे लम्हा ब लम्हा हमें देख रहे हैं, लम्हा ब लम्हा। मुमकिन है मैं इमाम को ना भी पुकारूं, शायद 1 साल तक मेरे जहन में खुदा ना खासा इमाम जमाना की याद भी ना आए, लेकिन वो लम्हा ब लम्हा मुझे याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे असली बाप हैं, वो हमारे असली रहीम हैं, रिवायत के अल्फाज हैं, रिवायत के अल्फाज हैं कि असली रहीम इमाम ज़मान और अहलुल बैत अलैहिस्सलाम। इंशाल्लाह आप दुआ करें कि इन टॉपिक्स को हम मज़ीद पेश करें, और मैं आपसे आखिरी दरख्वास्त ये करूँगा कि आप कोई भी सजेशन, कोई क्रिटिसिज्म, कोई आपको ऐसा लगता है कि ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है या इन जैसे टॉपिक्स वाकई प्रैक्टिकली ज़रूरी है, और अगर आपको फील होता है कि इन टॉपिक्स को मज़ीद पेश किया जाना चाहिए, तो इंशाल्लाह आपके पेशनहादात और कमेंट्स और सजेशंस के मुंतज़िर हैं इंशाल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
اللهم صل على محمد